हम चर्चा कर रहे थे ईश्वर के ऊपर स्वामी दयानंद जी के आर्योद्देश्य रत्नमाला से। इसमें दो तीन हफ्ते दूसरे कार्यक्रम है। स्वामी जी ने जो डेफिनेशन दिया था ईश्वर के बारे में, ही हु इज कॉल्ड ब्रह्मा और परमात्मा, वो परमिट्स द होल यूनिवर्स, इज ए पर्सोनिफिकेशन ऑफ एक्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस एंड पीस, हुज नेचर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स आर होली, हु इज ओमनिशियंट फॉर्मलेस ऑल फॉरबिडिंग अनबर्न इन्फिनिट ऑलमाइटी जस्ट एंड मर्सीफुल, हु इज द ऑथर ऑफ द यूनिवर्स एंड सस्टेन्स एंड डिसॉल्व्स इट, हु अवर्ड्स ऑल सोल्स द फ्रूट्स ऑफ देयर डीड्स इन स्ट्रिक्ट accordance with the requirement of the absolute justice and is possessed of the like attributes, even him I believe to be the great. हम पिछले दिन को याद हो, क्योंकि दो संडे के बीच में गैप रहा, हमने चर्चाएं की कि कैसे ईश्वर एब्सोल्यूट जस्टिस के हिसाब से कर्म फलों को देता है, सर्वव्यापक है। जिस तरह के परसेप्शन पूरे दुनिया में अलग अलग रिलीजन में ईश्वर के बारे में है, उससे अलग हमारा शास्त्र बताता है। पर समस्या है कि हमारे शास्त्र जो बताते हैं, हमारे लोग ठीक उससे उल्टा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। उसका शायद कारण यही है, जैसे पिछले बार भी हमने चर्चा की थी, कि जिस ईश्वर ने संसार को बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया, हम उसको नहीं पूछते, उसके बारे में हमारा बहुत कम इंटरेस्ट है। हम उस ईश्वर को पूछते हैं जो हमने बनाया। The God we worship in all over this earth, it's made by us. हमने अपने फायदे के दृष्टि से हमने एक काल्पनिक एक इमेजिनरी गॉड को बनाते हैं और उस गॉड को पूछते हैं अपने बेनिफिट के लिए, वो भी मोमेंटरी बेनिफिट के लिए। उसमें भी कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, कोई दुख दर्द वगैरह प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या जो हम पाप करते हैं, जो बुरे काम करते हैं, उससे बड़े शॉर्टकट वे से आसानी से छुटकारा पाने के लिए। अब यकीन मानिए, रिलीजन तो है ईश्वर के लिए, पर यकीन मानिए जितने भी दुनिया में रिलीजन है, इंक्लूडिंग हिंदू, जो मॉडर्न सो कॉल्ड हिंदू, ये 99% एथिस्ट हैं, मतलब जो ईश्वर को अंदर से नहीं मानते, ऊपर से मजबूरन मानना पड़ता है। उनका इंटरेस्ट ईश्वर में कम है, उनके प्रोफेसी इनके प्रोफेट में ज्यादा है, अपने फायदे में। और जो प्रोफेट है, वो प्रोफेट कोई भी हो, हिंदुओं के अवतार हो या जिस वो मुस्लिम और क्रिश्चियन बौद्ध, उनके अपने प्रोफेट हो, गॉड वहां एक मजबूरी में रखना पड़ता है। बाकी सारा एक्टिविटीज वो आदमियों के आसपास होता है, जो पैदा हुए हैं, मरे हैं, उनके आसपास होता है। दिल में ईश्वर के नाम लेने वाले आपको कम मिलेंगे। ये जो इंसान पैदा होकर मरे हैं, जो अपने आप को प्रोफेट बोला या उनके फॉलोअर्स ने ये साबित करने की कोशिश की, उनके नाम लेने वाले ज्यादा है। तो अगर आप थोड़े पढ़े लिखे लोग होकर के अपने दिमाग को खुला करके देखें, मोस्ट ऑफ पीपल आर एंटी क्विथे एंटी गॉड सेंटिंग, दोज हु आर रिलीजियस, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु क्लेम देम सेल्फ दैट वी आर रिलीजियस और स्पिरिचुअल, दे आर द मोस्ट एथिस्ट पीपल। वो जिस ईश्वर को मानते हैं हम लोग, हमारा ईश्वर हमारी बनाई हुई और हमें फायदा देने वाला, वो रियल ईश्वर जिसने संसार को बनाया, आपको बनाया, आपके शरीर को बनाया, पेड़ पौधे या प्लैनेट्स गैलेक्सी जो कुछ सिस्टम है, उसको मानने वाले बहुत कम है। और खाली इतना नहीं है, हम उनके लिए अपने 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 हिसाब से घर भी बनाते हैं, क्योंकि वो हमारा बनाया हुआ ईश्वर है। जिस ईश्वर को हम पूजते हैं, हमने उनके लिए जगह भी बनाया। भाई किसी के लिए वो चौथे आसमान पर है, किसी के लिए वो सातवें आसमान पर है, किसी के लिए कैलाश पर्वत पर है, किसी के लिए क्षीर सागर में है। अब ये सब बनाया क्यों कि एक पर्टिकुलर जगह पर ईश्वर बैठता है, रहता है, सोता है, उसकी बीवी बच्चे हैं वगैरह वगैरह? क्योंकि हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हमारा भी घर है, हमारी इमेजिनेशन की लिमिटेशन उतना ही है ना जितना हमारी हम खुद है। अब जैसे जैसे अलग अलग देशों में घूमते हैं, अलग अलग भाषाओं को जानते हैं, अलग अलग कल्चर को समझते हैं, आपका सोच समझ इमेजिनेशन भी उतना ब्रॉडन होता है, उतना चौड़ा बड़ा होता है। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, छोटे से एरिया में रहते हैं, लाइफ में कभी बाहर भी नहीं गए हैं जहां भी रहते हैं, तो आपकी सोच इवन इमेजिनेशन भी उतना ही होगा। रिलीजियस फाइटिंग इसीलिए होता है क्योंकि हमें ना जानने की इच्छा है वो रियल गॉड ईश्वर को। हमारे किसी किताब में लिखा है, किसी इंसान लिख दिया, तो सो कॉल्ड प्रोफेट या उनके फॉलोअर्स ने लिखा पढ़ाया जो भी, उसने कह दिया कि ईश्वर यहीं पर है, तो सब हम वहीं पर है, ना समझते हैं पढ़ते हैं। हमारे पुराने ब्राह्मण ग्रंथों में कहानी आती है, कहानी आख्यायिका है। आख्यायिका का मतलब कोई चीज समझ में ना आए तो उसको समझाने के लिए एक इंसिडेंट का, स्टोरी का सहारा लेते हैं। हमारे प्रॉब्लम है कि हम स्टोरी को ही सच मान बैठते हैं और उसके पीछे जो मैसेज है उसी को ही छोड़ देते हैं, तो इसलिए कहना पड़ता है ब्राह्मण ग्रंथों में स्टोरी आती है कि एक बार ईश्वर ने जब संसार को बनाया, बनाने के बाद लास्ट में मनुष्य को बनाया, इंसान को बनाया, इंसान उस ईश्वर का सबसे बढ़िया क्रिएशन है, क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा नमूना है, तो वो इंसानों के बीच में रहने लगा। तो इंसानों के बीच में रहने लगा तो इंसान जो उसके आसपास थे उन्होंने ईश्वर से कहा, पूछने लगे, जैसे कि हम जो कुछ काम न करने वाले लोग, अगर हमारे बीच में कोई काम करने वाला आदमी मिल जाए तो हम सलाह देने के लिए तैयार मिल जाते हैं। आपने ये किया, ऐसा क्यों किया, इसको ऐसे करते तो ठीक रहता, इसको ऐसे नहीं किया, ऐसे करते तो ठीक रहता। आपकी शादी ब्याह में आप देखेंगे, आपने जिनको इनवाइट किया, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स, जो 5 साल में 10 साल में कभी आए नहीं, अचानक आ गए 2-4 दिन के लिए, भाई आए, खाओ पियो, मस्ती रहो, जाओ, नहीं, वो पूरे घर के हर चीज में टांग डालेंगे और आपको सलाह देते फिरेंगे। भाई इस इंसान की फितरत, इस स्वभाव है। तो लोगों ने ईश्वर से सलाह देना शुरू कर दिया कि आपने नाक ऐसा क्यों बनाया, यहां क्यों नहीं बनाया, पेड़ ऐसा क्यों बनाया, पेड़ को नीचे मुंह वाला क्यों नहीं बनाया, पानी को लिक्विड क्यों बनाया, वहां सलीड बना देते हैं। सबकी अपनी अपनी सलाह है। आपने ठंडा बर्फ तो बनाया, गर्म बर्फ भी बनाते, कुछ भी जो मुंह में आया, बनाना तो खुद को होता नहीं है, सलाह देना होता है, काम करने वाले दूसरे होते हैं हर जगह। ऐसा नहीं कि वो कोई भी सोसाइटी हो, मंदिर हो, कम्युनिटी हो, जहां भी कोई काम होता हो, 2-4 लोग काम करेंगे, 10-15 लोग सलाह देंगे, बाकी लोग मजे लेते हैं। मजे लेने वाले बेटर हैं, जो सलाह देने वाले खतरनाक होते हैं। तो ईश्वर तंग आ गया, मतलब जहां भी जाएं, जिस कम्युनिटी में शिफ्ट है वहां लोग मिल जाते थे सलाह देने के लिए। तो उन्होंने अपनी एक मीटिंग बुलाई, अपने जो भी रिश्तेदार, जो भी उनके मंत्री वगैरह है, पूछा कि कोई अच्छा सा मुझे घर बताओ, कोई जगह बताओ जहां जाकर मैं रहूं और मुझे लोग तंग ना करें, मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीऊं। लोगों ने अपनी अपनी सलाह दी, आकाश में जाओ, आसमान में जाओ, पाताल में जाओ, स्वर्ग में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, बोले जहां भी जाऊंगा इंसान पहुंच ही जाता है, वैसे इंसान को हमने ऐसा बनाया, आज नहीं पहुंचा तो कल पहुंच जाएगा, है ना। कल आप चांद को पूछते थे, अब चांद पर पहुंच गए। आज भी लोग मंगल के हिसाब से अपनी जन्म पत्री बनाते हैं, लोग मंगल पर पहुंच चुके, पर अभी तक हम छोड़े नहीं है मंगल को, पकड़ के बैठे तो पहुंच जाएंगे। आप कहोगे सागर में रहो तो सागर तो वो सारा सागर मत चुके, ऐसे जगह बताओ जहां इंसान ना पहुंचे। लोगों ने अलग अलग सलाह दी। एक बुजुर्ग मंत्री थे, दोनों ने कहा कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोगों के अंदर रहने लगो। कहते ईश्वर तब से सबके अंदर रहने लगे, करोड़ों करोड़ों सालों से लोग आप उसको ढूंढते नहीं मिलता, मंदिर में मस्जिद में चर्च में कहीं नहीं मिलता, बाबाओं के आश्रम में योगियों के योग साधना आश्रम में कहीं नहीं मिलता, योग स्टूडियो में कहीं नहीं मिलता। क्यों? वो तो तुम्हारे अंदर है और हमारी दिक्कत है हम अंदर कम जाना पसंद करते। देवियों सज्जनों कहानी का अर्थ ये था कि वो तो सब जगह है, इसको किसी पर्टिकुलर जगह पर ढूंढने पर नहीं मिले। और ये जो हमने जगह बनाया, ये जगह हमने अपनी अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से बनाया। आपको बताया भारत में हम लोग जो प्रसाद चढ़ाते हैं, हर राज्य का प्रसाद अलग होता है, वो दूसरे राज्य के खाने पाने वाले चीजों को प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाते, उसको अपवित्र मानते हैं। नॉर्थ इंडिया में रेबड़ी चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे, बंगाल में जाएंगे वो चावल दाल सब्जी चढ़ाएंगे, हर एक की अपनी अपनी है। अब तो ये इस्कॉन टेम्पल में पिज्जा भी चढ़ा देते हैं, वेजिटेरियन पिज्जा। नहीं, ये कोई बुरी बात नहीं है, मतलब आप चावल चढ़ाओगे तो पिज्जा चढ़ाने में क्या हर्ज है। एक स्वामी जी आए थे मैंने खाना खाने के लिए, मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा पिज्जा खाना पसंद करेंगे, वो ची 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 ची। हम इसकी निंदा करते हैं। क्यों भाई? मतलब रोटी में क्या ऐसी दिव्यता है और पिज्जा में कम पड़ गई? ठीक है आपको फैट प्रॉब्लम है मत खाओ, वो अलग बात है, निंदा क्यों करते हो? इसका धर्म के साथ क्या लेन देन हो गया? अब मीट नहीं खाते हो मत खाओ, वेजिटेरियन पिज्जा है, चीज पिज्जा है। हर चीज, क्योंकि हमारा भगवान पिज्जा कैसे खाएगा? हम भगवान वाले आदमी है और हमारा भगवान, मैं पिज्जा खाऊंगा तो भगवान क्या बोलेगा? उनको ये तर्क नहीं है कि पिज्जा कल्चरली डिफरेंट है, जो भी है, नहीं, लोग क्या कहेंगे, कृष्ण भक्त होकर के पिज्जा खाता है, जीसस का भक्त बर्गर खाएगा। अबे खाना तो जियोग्राफिकल चीज होता है ना, आप जिस एरिया में रहते हैं वहां जो मिलता है, लोगों ने जिस तरह के खाना डेवलप किया है वैसा खाना मिलता है, पर हमने जोड़ा है ईश्वर के साथ भी खाने को जोड़ा है, प्रसाद भी वही चढ़ाते जो हम खाते हैं, नहाते हैं, धुलाते हैं, नैवेद्य प्रातः नैवेद्य सुबह का नाश्ता चढ़ाते हैं। कौन भगवान खाता है सुबह का नाश्ता, लंच का प्रसाद, डिनर का प्रसाद खाता है? आप खाते हो, मैं खाता हूं। वो जो प्रसाद के रूप में दो निकाल के रखते भी है मंदिर में, उसको भी चीटी खा जाता है या सड़ जाता है, आप फेंक देते हो, खाते तो आप हो। तो ये हमारी काल, हमारी जो इमेजिनेशन है, उस इमेजिनेशन का क्रिएशन है, हमारे द्वारा पूजा जाता हुआ देवता उसके साथ। यजुर्वेद का मंत्र है, ईशावास्य उपनिषद में आप पढ़ते हैं, सपरियगा चुक्रमका यम प्रणमश्नाभिरम शुद्धम पापविद्धम कबीर मनीषी परिभो स्वयं भूर याथा तथ्यतोर्थान व्यदधात छाच्छती समाभ्य। ये यजुर्वेद के 40वां अध्याय का, ईशावास्य उपनिषद का भी वही, यजुर्वेद का 40वां अध्याय को ईशावास्य उपनिषद कहते हैं, इसी का मंत्र है। सब पर यह गात, वो ईश्वर जो कि ऑल परमिशिव है, ब्रिलियंट है, अकाय है, काय रहित, बॉडीलेस है, विदाउट वाउंस है, विदाउट सिनेज है, सेंटलेस सिनलेस ओमनिशिएंट रूलर ऑफ माइंड ट्रांसेंडेंट एंड सेल्फ एग्जिस्टेंट ही डजंट नीड एनी सपोर्ट फॉर हिज एग्जिस्टेंस ही हैज ड्यूली अलर्टेड द थिंग्स इन द प्रॉपर वे एज इट शुड बी टू एवरीवन। ये संसार में जो कुछ भी आप देखते हैं बड़े सिस्टमिक वे से बनाया गया है। इंसान पहले पैदा नहीं हुआ जी। जब इंसान के जिंदा रहने लायक सारी चीजें धरती पर बन गई तब आप पैदा हुए। कोई रैंडमली डिसीजन नहीं लिया, जैसे हमारे साइंटिस्ट लोग कुछ भी करने के लिए रिसर्च करते रहते हैं। क्यों? थोड़ा नाम हो जाए, फेम हो जाए, पब्लिक का भला होता है नहीं होता है, वो सिस्टम को सपोर्ट करता नहीं करता, ये हमारे साइंटिस्ट के लिए मैटर नहीं है। पर ईश्वर एक ऐसा साइंटिस्ट है, हर चीज सिस्टमेटिक है, हर चीज का एक यूज है। अब जिस सांप को मार डालते हो, कीड़े मकोड़ों को मारते हो, उनका भी इस इकोलॉजी में एक यूज है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो हमें नहीं पता लग पाते, हम इंजीनियर्स नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, हम सिर्फ गाड़ी चलाते हैं, हमें पता नहीं है गाड़ी के अंदर इतने सारे जाल क्यों बिछा हुआ है, मशीन के इतने तरह के जाल है। जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, जो साइंटिस्ट है, उनको पता है, इसलिए हमें छेड़ने की जरूरत नहीं, गाड़ी चलाना है चला। हर चीज का अपना एक यूज है। यथा तथ्य तो वेदधात शास्त्र, अनंत कालों से ईश्वर की हर चीज अपने आप में व्यवस्थित है। आप और मैं पूछूंगा, ये रात क्यों बनाई भगवान? दिन ही दिन बनता, 24 घंटे दिन होता, पर आपको रेस्ट करने के लिए भी तो मौका चाहिए। आप कभी ये मत सोचिए कि सोना एक बेकार चीज है, सोना जरूरी है, आपकी बॉडी को रेस्ट देना जरूरी है। जैसे दुनिया की कोई भी मशीन हो उसको रेस्ट चाहिए होता है, उसकी सर्विस करनी होती है, हर चीज अपने अपने सिस्टम में है। ज्यादातर मॉडर्न हिंदुइज्म में जो प्रॉब्लम आया कि हमारा धर्म जो है 1,500-2,000 वर्ष तक हमारे जो एंसेस्टर्स रहे मोस्टली इलिटरेट रहे। इवन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब भी मुश्किल से हमारे यहां 15-20% भी लिटरेट लोग नहीं थे। आज भी हमारे यहां मुश्किल से 55 करीब लिटरेट हैं। जब लिटरेट की बात करते हैं, जिनको अपनी मदर लैंग्वेज में सिर्फ लेटर आता है पढ़ना और साइन करना आता है, दैट्स इट, इट्स नॉट एजुकेशन। अगर एजुकेशन की बात करें तो मुश्किल से 20-25% भी आज इंडिया के लोग एजुकेटेड नहीं है, इवन 10th पास या मैट्रिक पास ऐसा नहीं मिलेगा। और आप 100 साल 200 साल पहले पुराना जाइए, आपको मुश्किल से कोई एक आधा पढ़ा लिखा मिलेगा पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में। आप समझ सकते हैं हम 1,500-2,000 साल से इलिटरेट रहे। हम तो हमारे शास्त्र कितने ऊंचे रहे, ज्ञानी रहे, जो भी रहा वो अलग बात है, पर ऐसा समय आया कि हम इलिटरेसी में काफी साल रहे, डार्कनेस। खाली इलिटरेसी में नहीं, हम गुलाम भी रहे। वो जो कल्चरल इंकर्शन हुआ, जो हमारे धर्म में, संस्कृति में, भाषा में जो बदलाव आए, और हमारा कुछ उसमें आउटपुट नहीं गया क्योंकि हमारी सिस्टम ऐसी बनी हुई थी, उसका रिजल्ट हुआ कि हमारे शास्त्र व हमारे ऋषि मुनियों का विचार कितना भी महान रहा हो, हम उससे दूर होते गए। और उन इलिटरेट लोगों को धर्म के साथ जोड़े रखने के लिए जो धर्माचार्य लोग आए, वो उस लेवल पर बात की जिस लेवल पर इलिटरेट आदमी को समझ में आता है। अब हम एजुकेटेड होते गए, इन द नेम ऑफ प्रिजर्विंग अवर कल्चर वी आर फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स विच इज एस्टैब्लिश्ड प्रोपागेटेड फॉर इलिटरेट बाय इलिटरेट। कभी कभी मैं पूछता हूं पढ़े लिखे हिंदू लोगों को, सो कॉल्ड हिंदू लीडरों को, जरा बता दो ये वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, ये दर्शन शास्त्र, ये किसके हैं? मुसलमानों के हैं, क्रिश्चियनों के हैं, बौद्धों के हैं, तुम्हारा तो नहीं है, तुम तो पहले से छोड़ रखे हो। इसका रिजल्ट क्या हुआ? हम बहुत सारे चीजों में बिल्कुल इल्यूशन में हैं। दो चार चीजें आपके सामने रखेंगे, वेस्टर्न पीपल को भी ये प्रॉब्लम है ही, वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ने वाले समझने वाले लोग हिंदू धर्म को समझने में मुश्किल है, और हमारे पढ़े लिखे लोगों को भी ये मुश्किल है। ईश्वर के बारे में जो हमारे यहाँ कंसेप्ट था, दो चार अगर आप उसके वर्ड्स को भी ठीक से समझ ले तो आपको क्लियर हो जाएगी। पहली चीज ये है कि तीन चार शब्द जनरली हम अपने नॉर्मल भाषा में यूज करते हैं, भगवान, ईश्वर, देवता, ब्रह्मा, ईश्वर, दीज आर द वर्ड्स वी आर यूजिंग फॉर द। जनरली ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है, लिटरेरी मीनिंग है, ऑल परवेडिंग, जो सब जगह फैला हुआ है, वृंगे व्याप्त हो। ईश्वर के लिए ब्रह्म शब्द केवल नहीं है, अन्नम वही ब्रह्म, खाना को भी ब्रह्म कहा, पुत्रो वही ब्रह्म, संतान भी को ब्रह्म कहा, ज्ञानम वही ब्रह्म, नॉलेज भी ब्रह्म कहा। क्यों? क्योंकि जो चीजें फैलता है, एनीथिंग विच इज स्प्रेडेड, वो सब ब्रह्म है। पर ये परमात्मा ईश्वर भी ब्रह्म है, नेचुरली वो ऑल परवेडिंग है, सब जगह फैला हुआ है। ब्रह्म सूत्र ग्रंथ बना जो सिर्फ ब्रह्म ईश्वर के बारे में बताने के लिए। परमात्मा आत्मा तो इंडिविजुअल सोल्स है, बींग्स है, हम, आप, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, जिसके अंदर जीवन है, लाइफ है, उस सब उसके अंदर एक सोल है, स्पिरिट है, आप जो भी कहे, उसको हम आत्मा कहते हैं। और वो आत्मा जो सुप्रीम सोल है, परम मतलब सुप्रीम, कल्मिनेशन, जहां उससे आगे कुछ नहीं, सबसे बड़ा, वो परमात्मा है। वो परमात्मा जो सच्चिद आनंद हम बोलते हैं, एवर एग्जिस्टिंग, चित मतलब एवर कॉन्शियस, आनंद मतलब एवर ब्लिस। ईश्वर में आनंद नहीं है देवियों सज्जनों, ईश्वर ही आनंद स्वरूप है, द प्लेस इटसेल्फ इज गॉड। ये जो हम यूज करते हैं ब्लिसफुल गॉड, ये कॉमन लोगों के लिए तो चलता है, पर जो पढ़े लिखे शास्त्रों को समझते हैं उनके लिए ये एक मिस्टेकन वर्ड है। गॉड इटसेल्फ इज ब्लिस। जो सन्यासी योगी लोग जिसको पाने के लिए कोशिश करते हैं, वो ईश्वर पाकर क्या करेंगे? ईश्वर को क्यों पाने की कोई कोशिश करता है? बिल्कुल वैसे ही जो चीनी खाता है, गुड़ खाता है, उसको किसी दिन किसी ने रसमलाई खिलाया, रसगुल्ला खिलाया, बढ़िया वाला, अब वो चीनी गुड़ अब नहीं खाता है। मीठा तो दोनों है, पर फर्क है, टेस्ट में फर्क है, क्वांटिटी में फर्क है, टेस्ट की इंटेंसिटी में भी फर्क है। अब थोड़े मीठा खाने की इच्छा हो, ये खाने के बाद आपको कभी कभी मीठा खाने की इच्छा होता है, अब थोड़े अब चीनी गुड़ खाएंगे जिसको चस्का लग चुका है, रसमलाई का, रसगुल्ले का, गुलाब जामुन का वगैरह वगैरह, डोनट्स का, इसका भी आप खाते, अब थोड़े चीनी खाए, यही हालत है। दुनिया में जो सुख मिलता है वो चीनी गुड़ की तरह है, इनको थोड़ा और उससे बेहतर मीठा चाहिए, वो अंदर की ओर जाने की कोशिश करते हैं। जो मिठास के जो कल्मिनेशन है, जो अल्टीमेटनेस है, वो उस परमात्मा है, परमात्मा में नहीं है। उसको रियलाइज करने का मतलब होता है कि रियलाइज दैट सुप्रीम ब्लिस। वैसे किसी को, ये इंसान जैसा सेल्फिश पर्सन को क्या पड़ी है ईश्वर पाने के लिए दुनिया छोड़े? फायदा है, वो फायदा क्या है? दुनिया में जो सुख मिलता है उसे करोड़ों 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 गुना सुख वो है। इसीलिए कुछ लोग उसकी लिंक्स के पीछे पड़े रहते हैं, घर परिवार छोड़ के, दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। वो कोई नहीं कह रहा छोड़ के जाने के लिए, वो तो सेल्फ इंटरेस्ट होता है। जिसको कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई लीडर बनता है, हर एक अपने अपने गोल है। कोई ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए जाता है, सन्यासी बनता है। सबको बनने की जरूरत है। सो दैट इज कॉल्ड परम आत्मा सच्चिद आनंद, एंड दैट इज वन सुप्रीम रियलिटी, एकम अद्वैतम। अद्वैतम का अर्थ क्या है? न द्वैतम, देर इज नो सेकेंड। आपका एक प्रेसिडेंट है, उसका एक वाइस प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट छुट्टी पर गए, वाइस प्रेसिडेंट काम संभाल लेंगे। बोले कई वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, फिर कोई डेप्यूटी प्रेसिडेंट हो सकता है। आपके यहाँ तो एक ही प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट। कोई जॉइंट प्रेसिडेंट होगा, कोई अंडर प्रेसिडेंट होगा, कोई सुप्रीम प्रेसिडेंट होगा। जैसे भारत में कभी कभी प्राइम मिनिस्टर होता है, घर में बैठा हुआ एक सुपर प्राइम मिनिस्टर भी होता है। वो द्वैत है, बहुत सारे लोग वहां होते हैं। ईश्वर एकम है, एक है। तो प्रेसिडेंट तो एक ही होता है, पर उसका सेकंड भी होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। पर उसका कोई डेप्यूटी ईश्वर, जॉइंट ईश्वर, असिस्टेंट ईश्वर, एसोसिएट ईश्वर, ऐसा कुछ नहीं होता है। कि ईश्वर छुट्टी पर गए, मंगल ग्रह गए, तो धरती में कौन संभालेगा, ऐसा कुछ नहीं। एवर एग्जिस्टेंट, एकम अद्वैतम, नॉन एल्स इक्वल टू, ग्रेटर और स्मॉलर देन ही। कोई छोटा ईश्वर नहीं, बड़ा ईश्वर नहीं, बराबर का ईश्वर नहीं, एक और एक। वो जो परमात्मा है जिसने इस संसार को बनाया, जब संसार को बनाया, हमारे में क्या होता है, हम पढ़े लिखे होने बावजूद भी हमारी समझ में थोड़ी, हमारे परसेप्शन ऐसा बना हुआ है। हम जब हम अपनी दुनिया की बात करते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि हम कितने, हमारा सोच बड़ा है। मैंने अगर दुनिया देखी है, बहुत सारे देशों में देश देखा है, जगह देखा है, तो मेरी सोच भी बड़ा होता है। अगर आप घर से बहुत कम बाहर जाते हैं, पड़ोसों से बाहर जाते कम जाते हैं, तो आपकी दुनिया, आपकी पड़ोस, आपका गांव, आपके 10-20 परिवार के लोग, यही आपकी दुनिया है। जब आप कहते हैं दुनिया वाले क्या कहेंगे, आपको कोई अफ्रीकन वालों से मतलब नहीं, यूरोपियन वालों से मतलब नहीं, आपको कोई अरबियन लोगों से मतलब नहीं। आपकी दुनिया का मतलब आपके फैमिली मेंबर, आपके रिलेटिव, आपके जान पहचाने वाले कितने लोग हैं, 10-20-50 फैमिली, दैट्स इट। जब आप कहते हैं मैं ऐसे कपड़े पहनूं, ऐसा खाना खाऊं, ऐसे बोलूं, ऐसा करूं, तो दुनिया क्या कहेगी, वो दुनिया कौन है आपकी, 10-20-50 लोग, दैट्स इट। तो हर आदमी की दुनिया अलग अलग होती है, हर रिलीजन की भी दुनिया अलग अलग है। अब एक कुछ रिलीजन का दुनिया जो है इजराइल के आसपास है, और कुछ रिलीजन की एरिया जो है वो इंडिया के आसपास का है, दैट्स इट। ईश्वर इस दुनिया पर राज करता है, मतलब दुनिया का मतलब वर्ल्ड होता है, यूनिवर्स। और हमारा यूनिवर्स वो छोटे से, ये धरती के भी एक छोटे से ज्योग्राफिकल पार्ट को घेर के रखता है। जब आप यूनिवर्स कहते हैं, उसमें गैलेक्सीज भी आते हैं, उसमें मिल्कवेज भी आते हैं, उसमें स्टार्स भी आते हैं, प्लैनेट्स भी आते हैं। और कितने स्टार हैं, कितने गैलेक्सी हैं, कितना बड़ा ये स्पेस है। आप कभी स्पेस को बारे में सोचने लगे, देखने लगे, तो जिनका हार्ट कमजोर है वो तो हार्ट अटैक होगा, इतना बड़ा दुनिया है। जब आप कहते हैं ईश्वर सारा संसार का है, तो वो सिर्फ भारत का नहीं है, या इजराइल का नहीं है, या तिब्बत का नहीं है, या मक्का मदीना का नहीं है, या अरब में पैदा होने वालों का नहीं है, वो संपूर्ण विश्व धरती, तो ये अर्थ प्लैनेट तो उसके सामने रेत के भी बराबर नहीं है। रेगिस्तान में जितने रेत हैं, उसमें एक रेत की जो वैल्यू है, उससे भी कम वैल्यू है इस अर्थ की, इस दुनिया में। और आपकी हमारी वैल्यू समझ लीजिए, हम तो चींटी से भी बदतर हैं। और अकड़ते हैं, फिर चींटियों में भी आपस में अकड़ने की विधान होता होगा तो हम भी आपस में अकड़ लेते हैं, उसमें कोई बात है। पर इंसान जब चींटियों को देखता है ना अकड़ता हुआ, हंसता है। चींटी और अकड़ता है फिर क्या औकात है? जब हम एक दूसरे से अकड़ते हैं तो हमसे बड़े बड़े कहीं बैठे होंगे, ईश्वर देखकर मुस्कुराता होगा कि चींटियों से भी छोटा प्राणी अकड़ता है एक दूसरे। जिसने सारे संसार को बनाया, पालता है, संघर्ष करता है, वो परमात्मा है। उसको संसार को पैदा करने के लिए, बनाने के लिए, पालने के लिए, बुरे लोगों को मारने के लिए, किसी प्रोफेट को भेजने की, किसी इनकर्नेशन कर लेने की, खुद को पैदा करवाने की जरूरत नहीं है। वो इतना हेल्पलेस इंसान नहीं है। जैसे मैंने कहा, जिस गॉड को हम पूछते हैं, इट्स मेड ऑफ अस, ये हमने बनाया है अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सेल्फिशनेस को सेटिस्फाई करने के लिए। पर जिस गॉड को हम नहीं पूछते हैं, मानते हैं, पर जो हमारा शास्त्र कहता है, वो जो इस संसार को बनाया, संसार मतलब तुम्हारा छोटा सा दुनिया नहीं, इस विशाल ब्रह्मांड को जिसने बनाया, जिसने सूरज चांद सूरज जैसे करोड़ों 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 ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस सन्स बना सकता है, उसको क्या जरूरत पड़ी दो चार गुंडे मवालियों को मारने के लिए पैदा होना पड़े, कंस को, रावण को, वगैरह वगैरह। उसको क्या जरूरत पड़ी एक खास पर्टिकुलर मिडिल ईस्ट की जगह को सेव करने के लिए आना पड़े, वही हेवन है। ये हमारा क्रिएटेड गॉड है, हम जिस एरिया में रहते हैं उसी हिसाब से देखते हैं उसको। पर जो रियल गॉड है, जो हमारी इमेजिनरी नहीं है, जो रियल है, उसके लिए ये इजराइल हो या वृंदावन मथुरा हो, वो तो समंदर के एक बिंद से भी बड़ा छोटा है। कितने दुनिया में लाखों प्लैनेट्स हैं आपको पता है? आपको पता है? मेरे से ज्यादा पता है। मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स आर देयर, सम आर लिविंग, सम आर डाइंग, सम आर डेड। हमें नहीं पता कि कितने प्लैनेट्स में हमारे जैसे प्राणी होंगे, लिविंग बींग्स होंगे। इसीलिए उसको कोई जरूरत नहीं है इनकार्नेट लेने की, कोई प्रोफेट भेजने की। ये हमारी अपनी इमेजिनरी सोच है। ईश्वर शब्द का अर्थ है रूलर, मास्टर या ओनर। आपको पता है संस्कृत में जो राजा लोग हैं इनको भी ईश्वर कहते हैं। जो जहां का राजा उसका ईश्वर है। आप कहेंगे संस्कृत में ओबामा को कहेंगे कहेंगे अमेरिकेश्वर, रूलर ऑफ अमेरिका। ईश परमात्मा भी ईश्वर है क्योंकि सारा दुनिया को मालिक है, सबका शासन करता है। दूसरा शब्द हम यूज करते हैं भगवान। मैं इन जिन शब्दों को आपके सामने बोल रहा हूं, अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन एक ही है, परमात्मा हो, ब्रह्म हो, भगवान हो, ईश्वर हो, आप एक ही ट्रांसलेशन करते ही गॉड। पर समझने ये मैं इसीलिए कहा कि एजुकेटेड लोगों को समझने की जरूरत है। आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम आपकी भाषा को, आपके धर्म को कैसे बर्बाद करता है। भगवान का सिंपल मीनिंग होता है पोजेसिंग, फॉर्च्यून, प्लेस, पोजेस, प्रॉस्परस। आज भी जो संस्कृत पढ़ते हैं या संस्कृत में बातचीत करते हैं, जब उनका कोई बड़ा आदमी, मान लीजिए उनके एल्डर्स, सीनियर्स, टीचर्स, जिनको रेस्पेक्ट करते हैं, या बॉस सामने आता है, वो जो ग्रीट करते हैं, जैसे आप नमस्ते बोलते हो, हाय हेलो करते हो, सर बोलते हो अंग्रेजी में, तो संस्कृत में भगवान बोलते हैं। भगवान नमामि, प्रणमामि, सिंपल मीनिंग है हाय सर। जो भी हमसे बड़ा है, बड़ा मीन्स जिसके पास मेरे से ज्यादा कुछ है,
जो मेरे से ज्यादा उपदेश करता है, धन हो, ज्ञान हो, नॉलेज हो, कुछ भी, जो मेरे से किसी भी मामले में बड़ा है, वो मेरे लिए भगवान है। सुरेंगे ईश्वर भी भगवान है, सारा संसार तो बचता है, पर कोई भी व्यक्ति भगवान होता है। इसलिए संस्कृत लिटरेचर में जो आप पढ़ते हैं भगवान वाल्मीकि, इट्स नॉट दैट गॉड वाल्मीकि, भगवान शंकराचार्य इस कारण की गॉड शंकराचार्य, वो तो आदमी था, सन्यासी था। इसके थोड़ा बहुत पैरेलल वर्ड ब्रिटिश अंग्रेजी में आप लॉर्ड बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड होता है। कॉमनली भगवान इज यूज्ड एज ए टाइटल ऑफ वेनरेशन, इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज लॉर्ड। इसकी सन फेमिनिन वर्ड होता है भगवती। ध्यान रखिए, ये जो भगवान या भगवती, ये कोई ईश्वर के इंडिकेटर नहीं है। अगर आपको कहीं ऐसा शब्द मिले तो इसका अर्थ जरूरी नहीं कि वो कोई गॉड के बारे में बात करते। और एक वर्ड है देवता, देव। संस्कृत में जो देव शब्द का अर्थ है, देवता, देवी, देव, जो भी वर्ड आप यूज करें, इसका जो एटिमोलॉजी है, इसका मतलब होता है हु गिव्स, हु इल्यूमिनेट्स एंड हु काइंडलीज, जो देता है, जो प्रकाशित करता है या जो प्रकाशित होता है, या जो भी चमकने वाले चीजें हैं, तारे, नक्षत्र वगैरह, उन सबको संस्कृत में देवता कहा जाता है। अगर मैं उसको समराइज करके बोलूं, हमारे लाइफ में जिसका भी कोई कंट्रीब्यूशन है, मैं जो आपके सामने हूं, इसके पीछे जिसका भी कंट्रीब्यूशन, जिसने भी मुझे प्रकाशित किया है, दिया या प्रकाशित किया है, वो सब मेरे लिए देवता है। मां हो, पिता हो, गुरु हो, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, बोलते हैं ना, क्या मतलब है? भगवान है, ईश्वर है? नहीं। अब गाय को देवता बोलते हो, वो गाय को ईश्वर मानते हो? नहीं। उसका कंट्रीब्यूशन है हमारे लाइफ में। जिसका भी मेरे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, वो सब देवा है। अगर फेमिनिन है देवता है, अगर मेल है तो देव है, देवता इज ए कॉमन वर्ड। हवा, पानी, आकाश, वो सब देवता। क्यों हम हमारे लिए देवता है? क्योंकि इनका, इनके बिना हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा ना। बिना पानी के हम कैसे जिएंगे, हवा के कैसे जिएंगे, आकाश के कैसे जिएंगे, पहाड़, पर्वत, नाले, समुद्र, पेड़, पशु, पक्षी, गाय, बकरी, जो कुछ है सबको हम पूछते। पर अगर आप पूछते हैं या कोई पूछता है, वैसे तो कोई नहीं पूछता इस भाव से, ये ईश्वर है, ये संसार को बनाने वाला है, तो मूर्ख होगा, समझ नहीं होगा, ना समझ ही होगी। पर हम बिल्कुल वही सोच रख के पूछते हैं जैसे मां बाप को पूछते हैं, जैसे टीचरों को रेस्पेक्ट करते हैं, जैसे अपने बड़ों को रेस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही देवता है। एक दूसरे टाइप की देवता हमारी कल्चर में है, माइथोलॉजिकल देवता। अंग्रेजी में अगेन इट्स गॉड। अब ये प्रॉब्लम तो अंग्रेजी गॉड की है। माइथोलॉजिकल क्या है? बहुत सारे हिंदू लीडर उनको माइथोलॉजी से बड़ा चीड़ मचता है। जो पौराणिक कहानियां हैं, जो पुराणिक देवताएं बनी, कहानियों के माध्यम से जो जो स्टोरीज आप सुनते हैं, स्टोरीज में जो देवताएं आती हैं, वो कोई रियल देवता है ऐसा नहीं है। उनके अलग अलग, वो माइथोलॉजिक है, दुनिया के अलग अलग कल्चर में ग्रीक माइथोलॉजी है, इजिप्शियन माइथोलॉजी है, चाइनीज माइथोलॉजी है, जो भी एंशियंट कल्चर है दुनिया में, अब बहुत कम एंशियंट कल्चर है जो अभी भी सस्टेन करते हैं। तो इसी तरह इंडियन कल्चर में भी माइथोलॉजी है, और हमारी माइथोलॉजी बहुत बहुत अमेजिंग है, बहुत रिच है, उस पर हमें प्राउड फील करना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम है कि हम माइथ मिथ को भी ट्रूथ मान के जब चलते, वहीं से बीमारी शुरू होती है। और उसमें जो अलग अलग टाइप की देवताएं हैं, कुछ पार्ट ऑफ स्टोरीज है, कुछ पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट इमोशंस है, डिफरेंट पार्ट ऑफ नेचर है। पानी है, हमने इसको पर्सोनिफाइड किया वरुण के रूप में। वेल्थ है, हमने इसको पर्सोनिफाइड किया लक्ष्मी के रूप में। पावर है, हमने उसको पर्सोनिफाइड किया दुर्गा शक्ति के रूप में। इवन कुछ इमोशन को भी हम पर्सोनिफाइड करके पुराणों में रखते हैं। आपका प्रेम है, उसकी देवता है कामदेव। तो कामदेव क्या है? पर्सोनिफाइड फॉर्म ऑफ योर लव, दैट्स विद्या, नॉलेज, सरस्वती। ये हमारे पौराणिक आचार्यों का, जो पुराण, जो कथा और कहानियों के माध्यम से बात कर लिखते थे, उसके द्वारा उन्होंने एक बहुत बड़ा भंडार स्थापित किया कहानियों की, माइथोलॉजी की। कुछ रियल स्टोरी है, कुछ मिथ है, मिक्सचर है। प्रॉब्लम कहां पैदा होता है? आप और आपके बच्चे मूवी देखने जाते हैं अवतार की, हैरी पॉटर की, और आप बड़ा एंजॉय करते हो। डायरेक्टर इतना परफेक्ट है कि आपको ये एहसास करने नहीं देता है कि ये फिक्शन है, पर आप घर आकर के ये नहीं लड़ते हो कि ये ट्रू है, ये रियल है। एंजॉय करते, आपका एंजॉयमेंट ही उसका पर्पस था, डायरेक्टर का। और उसके बीच में अगर कुछ मैसेज मिल जाता है, कुछ आपको कुछ मोरल मिल जाता है, अच्छी बात है। पुराणों का भी यही प्रयोजन था। लोग पढ़े लिखे नहीं, धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई घटती गई भारत में। वेद शास्त्र, उपनिषद, दर्शन शास्त्र हर लोगों से दूर होता गया। इवन जो ब्राह्मण लोगों ने ये स्तर, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों मिलके जो इन्होंने ये जाति प्रथा के नाम पर शूद्र और स्त्रियों को कम से कम 75% लोगों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा, उनमें भी ज्यादातर अनपढ़ होते गए। फिर कैसे धर्म की बात पहुंचाया जाए? कथा के द्वारा, कहानियों के द्वारा। तो उन्होंने सहारा लिया कथा, कहानी, स्टोरीज के माध्यम से। कुछ मोरल आपको मिले, पर प्रॉब्लम है कि आज हमें मोरल से कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें यह साबित करना है ट्रूथ, रियल स्टोरी। हमें इसमें कोई मजा नहीं है कि हैरी पॉटर अच्छी फिल्म है, अवतार अच्छी फिल्म है कि नहीं है। हमें इस पर बहस जरूर करने को तैयार है कि ये रियल स्टोरी है कि नहीं। वो डायरेक्टर तो बेचारा जिंदा है, वो आपसे बहस कर सकते हैं। पुराण लिखने वाले जा चुके हैं, आप उनके नाम पर कुछ भी उठपटांग कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम, तो दो तरह की देवताएं, एक जिनका हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, वो माँ बाप से लेकर के पेड़ पौधे, इकोलॉजी का कोई भी पार्ट ऑफ पार्ट है जिसके कारण हमारा एग्जिस्टेंस टिका हुआ है। नंबर टू, कुछ माइथोलॉजिकल पुराणिक कहानियों में जो कैरेक्टर आए, वो कैरेक्टर किसी का पर्सोनिफाइड फॉर्म हो सकते हैं या किसी इमेजिनरी हो सकते हैं, वो देवताएं हैं। एंड दे शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द गॉड, द सुप्रीम गॉड। जब हम इनको ठीक ठीक से डिस्टिंक्ट करना सीख जाएं, ईश्वर गॉड और लॉर्ड्स में, परमात्मा और देवताओं में, तो फिर आपको असली ईश्वर को पूजना आसान होगा। नहीं तो आप हजारों सालों से रिलीजियस पॉलिटिक्स तो कर सकते हैं, रिलीजियस लीडर तो बन सकते हैं, You cannot achieve spiritually anything because you are just fighting for fiction. अफेक्शन में बिजी रहते हैं, दोबारा उसी बात को कह करके समाप्त करने की ओर जाते हैं। जिस ईश्वर ने आपको बनाया, दुनिया को बनाया, आज के पढ़ा लिखा एजुकेटेड रिलीजियस पीपुल 99% उसकी पूजा नहीं करता। हम उस ईश्वर की पूजते हैं जिसको हमने बनाया है। द गॉड वी मेड आवर सेल्फ, वी आर वर्शिपिंग हिम फॉर आवर सेल्फिशनेस, क्योंकि हमें अपने पापों से आसानी से मुक्ति चाहिए, हमें अपनी बुराइयों से छुटकारा चाहिए, हम अपनी बुराइयों को जस्टिफाई करने के लिए ऐसा पंडित चाहिए, ऐसा अब वो पंडित ऐसा चाहिए जो ऐसा ही कोई इमेजिनरी गॉड को मानता हो, जो जस्टिफाई करेंगे जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, चिंता की कोई बात नहीं, आ जाओ कन्फेस कर लो, आ जाओ गंगा में डुबकी लगा दो, ब्राह्मण को खाना खिला दो, वगैरह वगैरह, गीता का एक चैप्टर पढ़ लो, सारे पाप छुटकारा है। हमें ऐसा गॉड चाहिए और ऐसा ही पंडित चाहिए। अब मोस्टली मैं इसीलिए कहता हूँ, मोस्ट ऑफ रिलीजियस पीपुल आर इन रियलिटी आर एथिस्ट। अगर आप सचमुच उस परम सत्य परम ईश्वर को पाना चाहते हैं, और यकीन मानिए आपका यह सौभाग्य है, यू आर फॉर्चुनेट कि आपके शास्त्र ऐसे हैं जो आपको रियल गॉड तक पहुंचा सकते हैं। फॉर दैट यू डोंट नीड ए सिंगल गुरु, बाबा, आचार्य, नथिंग, प्रोफेट, यू कैन गो डायरेक्टली। कोई शास्त्र कभी नहीं कहा कि आपको बिना गुरु के अवतार के आप ईश्वर को नहीं पा सकते, ये मार्केटिंग है, दैट्स डिफरेंट। पर आप फॉर्चुनेट हो, आप उसका फायदा उठा सकते हो अगर आप अपनी आंखें खोल सको, अगर माइंड को ओपन कर सको, अगर आप एक करेज हो ठीक डिसीजन लेने के लिए, भेड़ चाल के तरह बाकी लोगों के पीछे न दौड़ने की आदत हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने की, सुनने की, मानने की शक्ति हो, you can be a real spiritual person, you can feel that real God, can realize. आखिर में स्वामी जी की जो आर्य समाज का जो सेकेंड प्रिंसिपल है जो आपके साइड में लिखा हुआ है, ईश्वर की डेफिनेशन, वो आप एक बार देख लीजिए, इसी के साथ विराम करेंगे। God is existent, conscious, all place, again it's not blissful, it's all place, formless, almighty, just, merciful, unbegotten, infinite, unchangeable, beginningless, incomparable, the support of all, the Lord of all, Lord of all, all pervading, omniscient, and controller of all forms within, ever mature, imperishable, fearless, eternal, pure, and creator of the universe, with alone must be worshipped, no one else. In Upanishad mein aata hai, यह चक्षुषा, मैं संस्कृत न बोल के सिर्फ उसका हिंदी बता देता हूँ, जिसको आंखों से देख सकते हो वो ईश्वर नहीं, जिसने तुम्हारे आंखें बनाई है वो ईश्वर है। यह करने न, जिसको तुम कान से सुन सकते हो वो ईश्वर नहीं, जिसने तुम्हारा कान बनाया है वो ईश्वर है। जिसको तुम मुंह से बोल सकते हो वो ईश्वर नहीं, जिसने तुम्हारे मुंह में बोलने की शक्ति दी है वो ईश्वर है। जिसको तुम मन में सोच सकते हो वो ईश्वर नहीं, जिसने तुम्हारे मन को सोचने की क्षमता दी है वो ईश्वर है। चक्षुषा, इसका एक श्लोक बोल, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, इन उपनिषद में। देवियों सज्जनों, इसी के साथ आपसे प्रार्थना है, उस ईश्वर जिसने आपको बनाया, आपके संसार को बनाया, जिसने आपका और संसार का टेक केयर करता है, उसको मानिए, उसको पूजा करिए, और उसके लिए आपको दुनिया में किसी भी चीज की जरूरत नहीं। आपको मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको मन को निर्मल करना पड़ेगा। आप जितने ज्यादा से ज्यादा अपने माइंड को प्यूरिफाई करेंगे उतना ज्यादा आसानी से आप ईश्वर को पा सकते हैं। बाकी सब तो आपकी सोशल रिक्वायरमेंट है, सोसाइटी में जीने के लिए आपकी जरूरतें, जैसे सोशलाइजेशन इज पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस, वो आपकी पार्ट ऑफ सोशल रिक्वायरमेंट हो सकता है, बट इट्स नॉट स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू।